ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् स्कंध 8 अध्याय 20 श्लोक संख्या 21। पहले मैं 20 नंबर श्लोक स्वयं पढ़ता हूँ, फिर बाद में एक साथ दोहराएंगे 21 नंबर श्लोक। नेदुर्मुहुर्दुन्दुभयं सहस्रशः गन्धर्व किं पुरुष किन्नराजगो मनस्युनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् दादयत् रिपवे जगत्त्रयम्। गन्धर्व किं पुरुष तथा किन्नर ने पुनः पुनः हजार दुंदुभियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बड़ी महाराज कितनी महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने भगवान को दान देने में संपूर्ण 3 लोक दे दिए। भगवान को दान में संपूर्ण 3 लोक दे दिए। 21 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। तद वामनम रूपम अवर्धताद्भुतम्। तद वामनम रूपम अवर्धताद्भुतम्। हरेरनंतस्य गुणात्रयात्मकम्। हरेर अनंतस्य गुणात्रयात्मकम्। भूखं दिशं दुर्विवरं पयोधया। भूखं दिशं दुर्विवरः पयोधया। स्थिर्जग्मृदेवाङ्गृषयो यदा सता। स्थिर्जग्मृदेवाऋषयो यदा सता। तद्वामनं रूपम् अवर्धताद्भुतम्। हरेरनन्तस्य गुणात्रयात्मकम्। भूखं दिशो दुर्विवरापयोधयः। स्थिर्जग्मृदेवाऋषयो यदा सता। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ तद वह वामनम भगवान वामन का अवतार। रूपम रूप अवर्धता बढ़ने लगा। अद्भुतम आश्चर्यजनक। हरे हे भगवान का। अनंतस्य अनंत का। गुणत्रय आत्मकम 3 गुण से युक्त भौतिक शक्ति द्वारा विस्तारित शरीर। भूः भूमि। खम आकाश। दिशः दिशाएं। दो लोक। विवरहा ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र। पयोधया सागर जो जल को धारण करता है। तिरजा निम्न पशु पक्षी। नृ मनुष्य। देवहा देवता। रुसया रुसिगण जा जिसमें आसता निवास करते हैं। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। तब अनंत भगवान जिन्होंने बामन का रूप धारण कर रखा था भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहां तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न चित्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे। उनके शरीर के भीतर तात्पर्य बलि महाराज बामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसे विस्तार किया कि बलि यह देख ले कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही उनके शरीर में है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण हैं। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करते देखा जाता है। वह गंगा में स्नान करने के बाद अंजलि में गंगा जल भरकर गंगा को आपस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजलि जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजलि जल डालता है तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बन जाता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो न तो वह हमारी होती है, न ही इससे भगवान के ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपनी कोई वस्तु अर्पित करता है तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसका चेहरा अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान है, जो हमारी भी आदि स्रोत है। अतः जब भगवान को सजाया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर चल रहा है आठवां स्कंद की, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग है, आत्मा निवेदन समर्पण। और भक्ति जो की शुरुआत भी है, माम एकम शरणं व्रज। तो इसकी ज्वलंत दृष्टांत है आचार्य के रूप में बलि महाराज। इन्होंने सब कुछ बलिदान दे दिए, सैक्रिफाइस किए। तो एक अब भक्ति होता है युक्त भक्ति, एक भक्ति है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति है उसमें कोई अभिलाषा नहीं रहता, अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। और इसमें विशेष लक्षण क्या है, अनुकूलीन, अनुकूल है। किसकी अनुकूल है, कृष्णा। और कृष्णा भी अनुसरणीय है, उनको लक्ष्य करके ही इस भक्ति अर्पित होता है। तो केवला भक्ति जो है उसमें बिल्कुल साधक का लेस मात्र भी अपनी इच्छा नहीं रहती है। परंतु साधना भक्ति में हम लोग प्रयास करते हैं इस इच्छा से रहित होने के लिए, ज्ञान और कर्म से बचने के लिए, उसके प्रभाव से बचने के लिए। उसको भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जत करोसी जत अस्नासी जत जीवसी ददासी जत जत तपस्वसी कुंतेय तत करो समर्पण। तो ये कर्मार्पण है, फिर आखिर में आता है समर्पण। तो कर्मार्पण भक्ति से समर्पण को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसमें सब लेवल है। परंतु बड़ी महाराज जो भक्ति प्रदर्शित किए और आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं समर्पण के आचार्य, तो भगवान यूनिवर्सली सबसे मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्तिया प्रयच्छते, जो देता है भक्ति के साथ मैं उनकी भक्ति को ग्रहण करता हूँ। तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मा, क्योंकि देने की इच्छा रखता है इसलिए उनकी भक्ति को मैं ग्रहण करता हूँ, अर्थात आस्वादन करता हूँ, खाता हूँ अस्नामी। तो भगवान सबसे मांगते हैं और एक साधक व भक्त उस भगवान की कहने के अनुसार उसी प्रकार वो अर्पित करता है, जो भी कुछ वस्तु उनके पास हैं तो जथा समर्थ अर्पित करता है। तो दिया वस्तु गोविंदे तुभ्यम एवं समर्पय, ये आपकी दिया हुआ वस्तु में अर्पण करता है। परंतु इसमें संशय रहता है, सचमुच यदि हमारी हृदय में ऐसे भावना नहीं है तो शायद भगवान हमारी दी हुई भेंट को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्ति की भूखा है। तो साधक प्रयास करता है मेरे द्वारा दी गई भेंट भगवान स्वीकार करे, परंतु जब भगवान स्वयं आते हैं मांगने के लिए किसी एक भक्त से, तो कैसे समझना चाहिए, कैसे उस भक्त का भाव होगा, कैसे समर्पण होगा। स्वयं भगवान आते हैं मांगने के लिए, कितनी उच्च कोटि की भक्ति होगी। पहले से वो अपने मन को कितने विशुद्ध किया होगा। जो भगवद गीता में एक श्लोक है आप जानते हैं कि जन जन व्यापी स्मरण भाव तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उस भाव को वो अचीव करता है, जैसे जैसे स्मरण करता है उस भाव उनके पास लौट करके आता है आखिरी में रिजल्ट के रूप में। तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो भक्ति की जो प्रैक्टिस है ये भाव के साथ जुड़ा है। कैसे भाव है ये आनुकूल्य से कृष्णा मिश्रण, ये भाव के साथ जुड़ा है। अब सोचिए जब भगवान गोपियों की घर में जाते थे मांगने के लिए, कितनी बड़ी भाव है, और मांगते नहीं थे, सीधा जाकर के बर्तन में हाथ घुसा के चोरी करके लेके आ जाते थे। कितनी प्रगाढ़ भाव है भगवान की, और उनकी भी देने की कैसे भाव होगा। भगवान मांगने के लिए नहीं जाते हैं, चोरी करने के लिए तुरंत। तो उसी प्रकार जो ब्राह्मण पत्नियां हैं भगवान उनको भेजे जाओ, हालांकि ग्वाल वाल भूखे नहीं थे उस समय, वो कह रहे ग्वाल वाल कह रहे हैं दुस्सहम क्षुधाम, ये सहन नहीं होता है, अकस्मात अभी अभी कैलवा करके आए थे घर से और तुरंत उनको सवेरे सवेरे भूख लग गया, 9 बजा नहीं भागवतम क्लास से भूख लगना शुरू हो गया, चूहा खुद रहे हैं पेट में। भगवान का क्या हो गया, नहीं और सहन नहीं होता है, बहुत जोर भूख लगी है, चूहा कूद रहा है पेट में, कुछ तो करो व्यवस्था। भगवान कहे कि मुझे पता है कि यहाँ पर वैदिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप चल जाओ और ध्यान रखो मेरे नाम नहीं बोलना है, बड़े भैया का नाम बोल देना, क्षेत्रीय को दान देते हैं ब्राह्मण कभी कभी उनके नाम लेना, और बच्चे कहेगा अच्छा दे देंगे ना, हाँ हाँ मिल जाएगा, तो बच्चे दौड़ के चले है ना, हाथ जोड़ कर कह के हे भूदेव आप हमारे प्रणाम स्वीकार करें और हम आपकी पड़ोसी हैं, ग्वाल बाल हैं, गाय चरा रहे थे, कृष्ण ने हमको बलराम ने हमको भेजे हैं, कुछ आपका भेंट दे दीजिए, हमको भूख लगा है, उनको भी भूख लगी है। हालांकि उनको भूख लग रहा था लेकिन बलराम का नाम लेकर ही कहा कि उनको भूख लग रहा है, वो भेज दिए हैं, कुछ है पैक करके दे सकते हैं। ब्राह्मण लोग मौन व्रत लिए थे, बात नहीं करना है, चुपचाप रहना है, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे लोग बार बार कर रहे हैं, हे भूदेव कृपा कीजिए, देर हो रहा है ना, गोवन इधर उधर चल गए होंगे। फिर ब्राह्मण लोग ने कहा, अरे तुमको पता नहीं चलता है, बच्चे हैं तो इतना अकल नहीं है, यज्ञ चल रहा है ना, पूरा समाप्ति नहीं हुआ है, समाप्ति के बाद मिलेगा। चल गए बच्चे लोग, करे मना कर दी, भगवान के पास रोने लगे, इतना मेहनत करके गए कुछ मिला नहीं। भगवान कहते कि भिखारी को कभी निराश नहीं होना चाहिए, एक दरवाजे में नहीं मिला तो दूसरे दरवाजे। तुम ऐसा करो ना, इस बार जाओ उनकी पत्नियों से आग्रह करना और इस बार मेरे नाम बोलना, क्योंकि वो मेरी विषय में पहले से बहुत कुछ सुन रखी और उनके मन में बहुत प्रगाढ़ भाव है मुझे देने के लिए। देखिए ये यज्ञ पत्नियां कभी भी कृष्ण को दर्शन नहीं किए, ना कभी फोन फान किए होंगे, कुछ भी नहीं, लेकिन उनके विषय में सुन रखे थे, सुन करके इनकी इतनी प्रभाव भाव उत्पन्न हो चुकी थी। हाँ हमेशा ये सोचते थे कि कभी कृष्ण आएंगी हमसे मांगने के लिए, हम तो सुने हैं कि गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे रोज रोज भाव सोचते सोचते उनकी भाव इतनी प्रगाढ़ हो गया और भगवान उस भाव को रेसिप्रोकेट किया और तुरंत भेज दी। मानो आजकल जैसे मेल कर देते तुरंत आपके पास मैसेज आ गए, जे जथा मांग प्रपद्यन्ते अनन्य चिंतयन्तु मां। भगवान उस चिंतन में रहते हैं, उस भाव में रहते हैं। और इस बार वो ब्राह्मण पत्नियां ने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, सुनते ही यज्ञ चल रहा है, भोग है, प्रसाद नहीं बना है, यज्ञ पत्नियां को इतनी अकल आ गया। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वेद पढ़े नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज से डिग्री प्राप्त नहीं किए, हाँ एकदम घर में रहने वाली है, परंतु उनको महसूस हो गया कि ये ही भोक्ता है, भोक्ता आरम यज्ञ तपसा, कहते ये यज्ञ में और कौन ही, आग में थोड़ी डालना है, तुरंत भर दी और पहुंचाए, स्वयं लेकर के गए। अब सोचिए ये जो समर्पण भाव है तो बड़ी महाराज की भी कम नहीं है। यदि हम तुलना करें हाँ तो बड़ी महाराज की जो देने की इच्छा, ऐसा नहीं है कि भगवान आए थे छड़े ऐसे विक्रमणी बड़ी अद्भुत बामनम बड़ी के साथ छल करने के लिए, देवताओं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आए थे, नहीं, उनकी मुख्य उद्देश्य रहता है परित्राणाय साधुनाम, भक्तों की इच्छा पहले वो प्रायोरिटी देते हैं, उनकी प्रायोरिटी है ये, उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज पहला मुख्य उद्देश्य। तो बड़ी ने किस प्रकार बलिदान कर दिया सब कुछ, और यहां एक विचार करने विषय है, क्या विषय है, अरे भगवान किसी भक्तों से सीधा ग्रहण नहीं करते, बात जो साधारण भक्ति करता है, हम अर्पित करते हैं गुरु के माध्यम से, परंपरा से भगवान प्राप्त करते हैं, और बीच में उनकी गुरु हैं। भगवान जब कहते हैं आचार्य मांग अभी जानिए न अपमन्ये त करचित, ये शुक्राचार्य हैं उनके गुरु, वो मना कर रहे हैं, और ये विष्णु छलिया हैं देवताओं के स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आया है, मत दो तुम्हारा सब कुछ लूट जाएगा। परंतु बलि महाराज टस के मस नहीं हुए, उन्होंने कहते यदि वो विष्णु हैं उनके पास सब समर्थ है तो किसी प्रकार वो ले सकते हैं, परंतु मैं अपने वचन से नहीं मुकराऊंगा, क्योंकि हमारे वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो पहले बोल करके फिर मना कर देता है, मेरे प्राण चल जाएगा परत में वचन नहीं छोड़ूंगा। सोचिए वो आचार्य की वचन को, गुरु की वचन को कैसे उल्लंघन कर दिए, फिर भी परम सिद्धि को प्राप्त किया। रोज हम गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आराना करिया मने आशा, यही भक्ति की सिद्धि है। और ये विपरीत कर रहे हैं, गुरु मुख को टाल दिए। न अवमन्य कर जित, कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, सर्वदैव मय गुरु, फिर भी उनको परफेक्शन नहीं। इसलिए भक्ति की तत्व जो है ना विचारणीय है। सनातन गोस्वामी कहते हैं ना, तत्सुणम विचारणे कपरो, एंड में भक्ति की सिद्धांत को एनालिसिस करना चाहिए। विचार करिले चित्ते पाव चमत्कार, देन हम कंक्लूजन में आ सकते क्या था। एक्चुअली शुक्राचार्य मना कर रहे थे, किस लिए मना कर रहे थे, वो सोच रहे थे मेरे सब कुछ छिन जाएगा, और ये जो है स्वार्थ है, सिक्योरिटी फॉर वंस पोजिशन। गुरु को कभी भी अपने पोजिशन को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अरे मेरे शिष्य है, मैं उसको प्रचार किया हूं, छूट जाएगा मेरे हाथ। भक्ति योग है निरपेक्षता, जहां पक्षपात होती है वो भक्ति नहीं है। कभी कभी बहुत अथॉरिटी पे इसे कहते हैं, प्रभु जी आप ऐसे लेक्चर देना चाहिए जहां कि श्रोता आपकी कथा में बंधे रहे, उनका मन ना हटे। तो मुझे कोई बताया, बहुत सीनियर भक्त हैं बताए, तो मैं थोड़े समय विचार किया और मैं फिर उनको शाम को बुलाया। तो मेरे तो ऐसे ये मैं ऐसे सोच रहा हूँ, शास्त्र में भी जैसे विचार दी गई है आप इस पर भी विचार कीजिए। जब आप भगवान प्रीच कर रहे थे अर्जुन को, क्या वो बांध के रखे थे, सुनो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बता रहे थे, जैसे कि एकदम श्रुति को बहुत मधुर लगे, भवंति हृत्कर्ण रसायन कदा, एकदम भर गया हृदय। अर्जुन ने बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, कथम कैसे हुआ, मैं कैसे करूं, ये नहीं हो सकता, आर्गुमेंट कर रहे हैं, बांधने का क्या बात है। भगवान कहते ठीक है, तुम इतना सोच रहे ना, जत इच्छा से तथा करो, जैसे तुम्हारा इच्छा है ऐसे करो, कभी बांध के रखे, मैं तुमको दीक्षा दिया हूं, मैं तुमको प्रीच करके माला दिया हूं, सोलह माला तुमको कराए हूं, मेरी बात नहीं सुने तुम नरक जाओगे, कभी कहे ऐसे, कभी नहीं, इंडिफरेंस। भगवान यदि ऐसे होते कहते देखो मैं तुम्हारा रब चला के आया हूं, इतने समय से तुमको मैं समझा रहा हूं, क्लास दे रहा हूं, तब भी तुम नहीं समझ रहे हो, कभी नहीं कहे, लास्ट में कहे इंडिपेंडेंस। और ऐसी भावना से वास्तविक सरेंडरशिप आता है। अर्जुन ने क्या किया, जब भगवान ने छूट दिया दिए, अर्जुन ने क्या कहा, कर इससे बचन। तो इसी प्रकार भगवान कभी जबरदस्ती नहीं किए, तुम मुझे वचन दिए थे दे दो, बड़ी ने समर्पण कर दिया, सर झुका दिया, तब फिर भगवान बांधे। और यहां शुक्राचार्य आचार्य होने पर भी, गुरु होने पर भी अपने स्वार्थ रख देख रहे हैं, ये सब कुछ धन छीन जाएगा, मेरे परिवार कैसे चलेगा। दिस इज सेल्फिशनेस। तो भक्ति योग है अनपेक्ष निरपेक्ष। भागवत में भगवान उद्धव को कह रहे हैं, क्या है, अनपेक्ष मुनिर शांत निर्वेरा समदर्शिनः अनुब्रजामि अहं नित्यं पोयत अंग्री रेणुभि, पोयत अंग्री रेणुभि। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं जो अनपेक्ष है, निरपेक्ष है। और भगवान ऐसे भक्तों से ही जचना करते हैं, ऐसे भक्तों से ही भेंट स्वीकार करते हैं। अनपेक्ष अनपेक्ष सुचिर दक्षम उदासीन गतव्यथा सर्वारंभ प्रत्यागी। भगवान सब गुण बताए भक्तों के, उदासीन गतव्यथा तदीरपेक्ष। और जहां पर पक्षपाती होती है वहां स्वार्थ है, व्यक्ति को स्वार्थ ही अंधा कर देता है, उनको मार्ग नहीं मिलेगा, महाजन के मार्ग को अनुसरण नहीं कर सकता है। इसलिए बलि महाजन बने, शुक्राचार्य महाजन नहीं बने। आचार्य तो पहले लिए हैं लेकिन इस केस से वो नीचे चल गए। एक अंधा दृष्टिकोण, प्रिजर्वेटिव नेचर, हाँ ये मेरे ही है धृतराष्ट्र का। दूसरे गुण को नहीं देखना, फॉल्स सीनियरिटी, मैं सीनियर हूं मुझे तो पहले मिलना चाहिए। अरे पहले तो देखो क्या तुम्हारा दर्शन शक्ति भी नहीं है, देखना क्या है उनको, तो पहले तो अंधा है। दूसरे के गुण भी नहीं देखते हैं कि युधिष्ठिर कितने गुणवान है, वो दक्ष प्रजापति भी सीनियरिटी, हाँ फॉल्स सीनियरिटी, मैं ससुर हूं ये मेरे दामाद मुझे रेस्पेक्ट नहीं किया। तो इसी प्रकार शुक्राचार्य सोच रहे हैं ना, मैं गुरु हूं मेरी बात को उल्लंघन कर रहे हैं, बोल दिए तुम नरक जाओगे, नरक जाओगे, तुम अपने वादा को पूरा नहीं कर सकते हो, ये भी कह दी। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बड़ी कौन है, महापुरुष, वो महापुरुष है। महापुरुष वास्तविक शब्द भागवतम में प्रयोग की गई है, वंदे महापुरुषतम चरणारविंदम, ये दो श्लोक में आया है 11 स्कंद में। त्वत्वा सुदस्तजा सुर इप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैतया इप्सितम अन्मुधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्याग सुदस्तजा सुर इप्सिता, जिसको त्याग करना बहुत कठिन है परंतु त्याग किए, ये धर्म को स्थापन करके धर्मिष्ठ, इसे कहते ना पापिष्ट, पाप से युक्त हो, धर्मिष्ठ धाम धर्म को युक्त करने के लिए, बात धर्म की रहस्य क्या है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। आर्य बच्चे से भगवान रामचंद्र, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भी, तीनों जदगात अरण्य, तीनों ही जंगल थे और जंगल में मंगल होता है। बोल संक्षेप में बतला रहा हूं क्योंकि समय को हर समय ही दुरुपयोग करता हूं, अधिक समय लेता हूं। तो मतलब इतना ही है सार कि त्याग ही वास्तविक धर्म की पराकाष्ठा दिखलाता है। और ये क्या त्याग है, क्या त्याग है, हाँ अपने अभीष्ट की त्याग, अपने अहंकार की त्याग, अपने स्वार्थ की त्याग। कौन सी स्वार्थ है, नेम फेम एड्रेस, हाँ। और ये त्याग वास्तविक धर्म की संज्ञा को निरूपण करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। और इसके दृष्टांत कौन है, गोपियां, जो उद्धव जी कह रहे आशा बहे चरण रेण जुसा महं श्याम वृंदावने किमपि गुणमलता सुधीनाम जास्तस्तजा सोजन आर्ज्य पथम च हित्वा भेजे मुकुंद पदबिम श्रुतिभिम विमुक्त। उन्होंने आर्ज्य पद को भी, धर्म की जो मर्यादा है उसको भी त्याग कर दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये दृष्टांत दिखा। स्वजन संबंधी छोड़ दिए, ठीक है घर बार छोड़ दिए, पत्नी बच्चों को छोड़ दिए, बिजनेस छोड़ दिए, ये पराकाष्ठा नहीं है। पराकाष्ठा ये है आर्ज्य बचस आर्ज्य पथम धार्मिकता के पद को भी छोड़ देना और ये बहुत कठिन है। किस लिए? ना उस प्रेम की प्राप्त करने के लिए जो चार पांच श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग कर सकता है और उस समय कोई उनको दोष नहीं लगता है। ये बात भगवान दुर्वासा जी को कहे थे। मई अनन्य क्या है, मैं भूल रहा हूँ श्लोक, निर्बंध मई हृदय निर्बंध भक्ति कुर्बंती जे जना, एकदम दृढ़ता से। और कैसे? उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, अपने पत्नी पुत्र। इस मई निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शिना बसी कुर्बंती मां भक्त्यम सत स्त्रिय सत पति जथा, ये दारागार पुत्राप्तः प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा मं शरणं जाता कथां मं तक्तुर मत सहे। भगवान कहते हैं कि मेरी अंदर थोड़े से भी उत्साह नहीं होता है उसको त्याग करने के लिए, बल्कि उसको बांध के रखने के लिए मेरी इच्छा होती है। कौन? ये दारागार पुत्र आप्तान, जो पत्नी पति पुत्र अपने प्राण को भी अपने वित्त को संपत्ति को भी उसको त्याग देता है। हित्वा माम शरणम जाता, प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया, बस मैं कभी भी इसको त्याग नहीं करता हूं। हाँ, इसलिए भगवान एक और धर्म की सेतु निर्माण करते हैं। हाँ, धर्मिष्ठा जो आर्ज्य बचसा, आर्ज्य की पथ क्या है, यही है भगवान जो कहते हैं माम एकम शरणं व्रज, और फिर कहते हैं जोग खेमा अहम बहामी, मैं बहन करता उनका जो भी कमी रह गया। भगवान स्वयं गए शुक्राचार्य से कह दिए कि शिष्य का जो कमी रह गया है आप इसको पूर्ण कर दीजिए, तब शुक्राचार्य को महसूस हुआ। तो इसी प्रकार भगवान एक धर्म की सेतु को निर्माण करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। और अभी जब भगवान अपने शरीर को विस्तार किए तो उनकी शरीर इतनी विस्तारित होने लगा कि भगवान किस प्रकार सर्वत्र विद्यमान है, हमारी हर इच्छा में विद्यमान है। बड़ी की इच्छा को प्रतिपादित करने के लिए, बड़ी की इच्छा जो है बलिदान करने के लिए, उस इच्छा में ही सारे ब्रह्मांड है। कि मुझे देने के लिए इच्छा है कि मैं दे दूंगा आपको, आप जो मांगे तीन पग भूमि में पूरा कर दूंगा। भक्त भी कुछ भी देने के लिए इच्छा होता है तो पत्रम पुष्पम ये जल लेकर की गंगा जी में अर्पित कर देता है। ये जल ना ही उनका है ना गंगा जी उनका है, ये गंगा जी की जल है, परंतु उसमें अर्पित करने की जो भाव है, मुझे देने की जो भाव है, उस भाव भी उनको पूर्णता प्रदान करता है, वो भक्त बन जाता है। इसलिए कहते ये भगवान हरि की ये अनंत गुण है। हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम्, ये तीन गुण से भगवान ये संसार को रचे हैं। लेकिन ये गुण से मुक्त होने के लिए भगवान क्या उपाय दिए हैं? हाँ, मांच जो अभ्यभिचारिणी भक्ति जोग न सेवते सगुणान समतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये अभ्यभिचारिणी भक्ति केवल भावना है और कुछ उनमें साधक का इच्छा नहीं है। तो वही भगवान दिखलाए कि सारे संसार में कैसे उनकी भाव ही व्यक्त है। बड़ी महाराज के जो भाव था देने की भाव ही ये सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कत जो दे दिए ना, ये है आपका दो भू खम दिशा दौर विवरम पयोधर समुद्र में, ये भाव है। क्या भाव है? ना जो चरण कमल में अर्पित किया वही चरण को वृद्धि किए। और भगवान के चरण कमल में सब कुछ अवस्थित है और भगवान से ही सब कुछ विस्तरित होता है। मया तदैदं सर्वं जगतं व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं ते सबस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्यमे जोगमेश्वर्यं भूतभुन्नं च भूतस्त ममात्मा भूतः। ये जो दो विपरीत भाव हैं इसके समन्वय होता है समर्पण में। जो समर्पण कर देता है ये फिर ड्यूअलिटी नहीं रहेगा, भगवान है और नहीं भी है एक आत्मक। तो फिर सब लोग देखे कि भगवान जब अपने चरण को विस्तारित किए तो सब इस चरण में ही समा गए। तो इस प्रकार ये जो सीखा था कि समर्पण, प्रभुपाद दो दृष्टांत दे रहे हैं, एक तो गंगा जल में गंगा जी को सेवा करना और दूसरा क्या है, हाँ अपने चेहरा को सजा देने से क्या होता है, मिरर में जो चेहरा रिफ्लेक्ट होता है तो वो दिखाई पड़ता है। तो सोचे कि भाई तब तो फिर हम अपने ही भोग करें तो भगवान को आनंद मिल जाएगा हम भोग करें, क्योंकि मिरर का चेहरा तो रिफ्लेक्शन है ना। तो सचमुच ओरिजिनल चेहरा क्या है, हाँ भगवान जो भी है, हमारे जो सकल सूरत है क्या है, भगवान अवस्थित है। इदम ही विश्वम भगवान इरे रितम, केवल इतना ही भिन्नता है कि हम लोग जब भगवान से भिन्न देखते हैं वो माया है। रुतेत जत प्रतियेत तद अविद्या आत्मनं माया, आत्मा माया है। ये जगत वास्तविक भगवान के स्वरूप है, जो कुछ वस्तु में है भगवत स्वरूप है, सिर्फ अंतर्मुखी होने पर ही ये अनुभव होता है। तो इसलिए भगवान को समझ करके ये गोपियों की जो शरीर के श्रृंगार था क्या है, भगवान इसको भोग करे इसलिए सजाते, इसलिए उनकी मिरर की चेहरा सजाते। हम उस प्रकार संबंध नहीं सजाते हैं तो इसलिए हमको माया प्रतीत होता है, बंधन प्रतीत होता है और दुख और क्लेश मिलता है। तो इस प्रकार आज अभिराम ठाकुर की तिरभाव है, वो द्वादश गोपाल में कौन है, श्रीराम, जो 12 गोपाल हैं मुख्य भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार में सहायता करते हैं। तो उसमें पुरा श्रीराम नाम सद्भी ही राम अधुना महान द्वात्रिशतः जने एव नासहेत काष्ठम उवाह। उनके का विशेष कार्य था जो लकड़ी को कितने 32 लोग नहीं उठा सकते, हाँ ये तो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है 32 लोग, लेकिन भक्ति रत्नाकर में दिया गया है जो लकड़ी के 100 लोग बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं, उस लकड़ी को पकड़ करके एक बांसुरी बना दी अभिराम दास ठाकुर। उनकी जन्म हुआ था हुगली डिस्ट्रिक्ट खानाकुल जो कृष्णा नगर कहा जाता है, और ऐसे वैष्णव के जन्म स्थान को श्रीपाट कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम है मालिनी देवी। उनके पास एक अद्भुत कार्य था, क्या करते थे, उनके पास एक बहुत अच्छे वस्तु था, चुंबक, कृष्ण प्रेम देने के लिए, कौन सा था, चाबुक, डंडा नहीं है चाबुक था। वो चाबुक का नाम क्या है, जय मंगल दोनों, एक तो जय प्रदान करेगा और मंगल भी प्रदान कर सकता है ना, जय मंगल करने वाला, जय मंगल। तो जिसके ऊपर वो प्रहार करते थे तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो उनकी एक शिष्य, हालांकि उनसे दीक्षा नहीं लिए थे, कौन है, श्रीनिवास आचार्य, एक बार उनके घर में आए थे तो उनके पैर पर 3 बार पीट दिए। उनकी पत्नी ने कहा, अरे ये क्या कर रही है, बच्चों को क्यों पीट रहे हैं, है ना, वो छोटा बच्चा है, श्रीनिवास आचार्य बहुत छोटे थे। तो पत्नी ने कहा, एक तो बच्चा है उसको पीट दिए और दूसरा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, बच्चा लेट जाएगा, हाँ गिर जाएगा। लेकिन अभिराम ठाकुर उनको इतनी प्रेम करते थे, चाबुक में जब प्रहार किए तो एक्सटेंस में आ गए श्रीनिवास आचार्य, तो अभिराम ठाकुर उनको प्रेम प्रदान किए। और उनके एक दूसरे अद्भुत कार्य था कि जिसको प्रणाम करते थे अगर यदि वो विष्णु तत्व नहीं है, विष्णु की ड्यूटी नहीं है, वो क्या हो जाता था, फड़ जाता था। इसलिए नित्यानंद प्रभु को सारे बच्चे को है ना जितने फेरे थे सबको प्रणाम करके खत्म कर दिए, अद्वैत आचार्य के भी है ना। तो जब वीरभद्र प्रभु का, वीरभद्र गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का पुत्र जन्म लिया, उनकी पत्नी का नाम क्या था, जानवा। तो इनको पता चला तो नित्यानंद प्रभु समझ गए अभी वो आने वाला है, ये एकदम फोड़ देगा सब, घर फोड़ी कहते हैं ना, ये चला देगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहे, सोचे ये गंगा तो पार करके आएगा यहाँ, तो नौका वाला को सबको मना कर दिया कि आप लोग सब नौका लेके आ जाओ इधर, तो आ गए ये सब। तो अभिराम ठाकुर देखे अरे कोई भी नौका वाला नहीं है, अच्छा ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है कि मैं गंगा नदी पार नहीं कर सकता। उन्होंने चादर उठाया और गंगा नदी में फेंक दिए, नौका बन गए, उस पर चढ़ करके आ गए इधर। तो जब उनकी सेरेमनी हो रहा है, उत्सव चल रहा है, उस समय पहुंच गए तो नित्यानंद प्रभु, जानवा माता और वहां जितनी उपस्थित वैष्णव है सबका दिल धड़कने लगा, अब क्या होने वाला है। तो जानवा माता लेकर छिपा दी वीरभद्र प्रभु, और वो जाकर के चुपके से उत्सव चल रहा है जाके प्रणाम कर दिए, लेकिन वीरभद्र प्रभु का कुछ हुआ नहीं। तब वो समझ गए कि ये था विष्णु तत्व, वीरभद्र प्रभु मेरे छोड़ के आए। तो ऐसे जो वीरभद्र प्रभु हैं बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, हाँ तेजियन, और नित्यानंद प्रभु की पार्षद हैं। अभिराम गुरसाईरा प्रताप प्रचंड, जारे देखी कांपे सदा दुर्जय पाषंड, नित्यानंद आबे से उन्मत निरंतर, जगत विदित जार कृपा मनहर, रामदास अभिराम सख्य प्रेम रासी, सोल संगेर काष्ट तुली जे करीला बंसी। उनका नाम भी रामदास है और इसे लकड़ी से बांसुरी बजाते, बांसुरी बना दी, एक अद्भुत, इतना भारी लकड़ी से अपने आप बांसुरी बना दिया और उसको बजाते थे। सताधिक लोके जारे नारे चला इते, हे न काष्टे बंसी करी धरी ले ना हाते। तो इस प्रकार अभिराम दास ठाकुर की ये अद्भुत लीला है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति उनके शरीर में आवेश रहता है और जिसको देखते हैं उनकी उद्धार कर देंगे, पाषांडी पाखंड दलित है ना, आजकल सरकार सब दलित लोगों को उद्धार कर रहे हैं, दलित को ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक दलित पाषांडी को कौन उद्धार किए, नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद, और उनके पार्षद में ये अभिराम ठाकुर अन्यतम हैं। आज उनके तिरुभाव तिथि हैं तो हम उनसे कृपा की जाचना करें, हमारे अंदर जो पाषाणता है अज्ञता है तो इसको दूर करें। श्रील अभिराम दास ठाकुर तिरुभा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हिताय गौर हरि।